गोपीज वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol.
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोत्तर सत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की जय पिताए गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरुः श्री युत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादांग सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबको जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे लगा? अच्छा लगा? आप सब संतुष्ट हैं कल के उत्सव से? और आज भी एक दिन अभी उत्सव है, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना सेवा किया बड़े आनंद से, बड़े हृदय से, और ऐसे भगवान जगन्नाथ की कृपा सबको बांटने में आपने मदद की। ये समाज का सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार भगवान की भक्ति यही सबसे मंगल वस्तु है, क्योंकि इससे सबसे अधिक हित सबका हो सकता है। और इस कृष्ण भक्ति के पथ में कोई देश काल पात्र जाति भाषा धर्म भेद इत्यादि नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सबके परम पिता है। इसलिए हम सबके लिए ये कृष्ण भक्ति का पथ बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें स्वयं भी करना चाहिए और इसको बांटना भी चाहिए। और जो व्यक्ति इस कृष्ण कृपा को बांटता है वो बहुत ही कृपालु व्यक्ति माना जाता है, उदार हृदय का व्यक्ति माना जाता है। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के समय एक राजा थे जिनका नाम था प्रताप रुद्र। वो भगवान जगन्नाथ के या कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया और वो जगन्नाथपुरी में आए तो राजा प्रताप रुद्र भी उनसे बहुत प्रभावित हुए और वो भी उनका दर्शन करना चाहते थे, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वयं दर्शन नहीं दिया। जब भी महाप्रभु के भक्त उनके पास आते कि आप राजा प्रताप रुद्र से मिलिए, वो आपके दर्शन के लिए बहुत उत्सुक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी को ये राजा और रुपए पैसे वालों व्यक्तियों से कुछ लेना देना नहीं चाहिए, तो मैं उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता। तो भक्तों ने कहा लेकिन ये साधारण राजा नहीं है, ये बहुत बड़ा भक्त है और आपके प्रति भी इस राजा के हृदय में बहुत श्रद्धा है, इसलिए यदि आप ऐसी कृपा करेंगे तो उनका जीवन भी धन्य हो जाएगा। लेकिन महाप्रभु ने मना कर दिया। ऐसे अनेक बार जब भक्तों ने कहा तो महाप्रभु ने कहा कि अगली बार यदि आप ऐसे कहोगे तो मैं यहाँ छोड़ के चले जाऊंगा जगन्नाथपुरी। तो सारे भक्त इतने घबरा गए कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर भी ऐसे कहा जाता है कि भगवान के से ज्यादा कृपालु उनके भक्त होते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात श्री कृष्ण है, जगन्नाथ से अभिन्न है, तो उनके जो भक्त हैं उन्होंने सोचा कि श्री चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी के रूप में है, वो तो अपने नियम पालन तो कर रहे हैं, परंतु हमें कुछ ऐसे मार्ग निकालना पड़ेगा जिससे कि ये राजा को उनकी कृपा मिल सके, क्योंकि ये राजा प्रताप रुद्र एक विशेष राजा थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है तो वो अपने राज्य को त्यागने के लिए भी तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने में ये मेरा राज्य ही एक अड़चन हो रहा है, एक बाधा हो रही है, तो मैं राज्य को ही त्यागता हूँ। ये राज्य क्या अन्यथा क्या मूल्य है, और यदि राज्य त्यागने के बाद मैं एक योगी बन गया, एक वैरागी विरक्त व्यक्ति बन गया, तब महाप्रभु तो मुझे मना नहीं कर सकते। तो ऐसे उनका दृढ़ संकल्प देख के चैतन्य महाप्रभु के भक्त विशेष करके सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि देखो इसके अंदर इतनी श्रद्धा है कि ये अपने राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार है केवल महाप्रभु का दर्शन प्राप्त करने के लिए। अभी देखा जाता है कि लोग अपने संपत्ति से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने पद से आदि बहुत आसक्त होते हैं, इन चीजों को त्यागना इतना आसान नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे देखा जाता है, परंतु राजा प्रताप रुद्र देखिए कैसे राजा थे कि वो अपने सारे राज्य को भी त्यागने के लिए तैयार हो गए, और उनका संकल्प था ऐसे। फिर भी जब भक्तों ने देखा इनका संकल्प, आश्चर्यचकित तो हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए। राजा प्रताप रुद्र जैसे धर्म परायण कृष्ण भक्त राजा और कहां मिलेंगे। यदि समाज का भला होना है तो राजा को भी कृष्ण भक्त होना चाहिए। राजा दुष्ट हुआ तो प्रजा का सुख कैसे हो सकता, प्रजा सुखी कैसे हो सकती है। लेकिन राजा यदि कृष्ण भक्त हो और सारे प्रजा को अपने बच्चों के समान समझता हो तो फिर आजकल जो हम समाज में समस्या देखते हैं वो सब नहीं होंगे। ये भ्रष्टाचार और तरह तरह के समस्याएं हैं समाज में, वो इसलिए है कि लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, नहीं वो करना चाहते हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति अगर राजपद को त्यागेगा तो फिर समाज में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने अन्य भक्तों के साथ में विचार विमर्श किया और फिर सोचा कि कुछ न कुछ तो इनके लिए करना चाहिए। फिर उन्होंने राजा प्रताप रुद्र से कहा कि आप चिंता नहीं करो, वास्तव में महाप्रभु हृदय से आपको बहुत चाहते हैं, परंतु बाह्य रूप उनका सन्यासी का है, इसलिए समाज में एक मर्यादा रखने के लिए वो ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए आपको निराश नहीं होना चाहिए। और फिर भी महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हम आपको एक मार्ग बतलाएंगे। आप तो जानते हैं कि हर साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में लाखों लाखों लोग आते हैं, तो वहां पे रथ यात्रा तीन रथ होते हैं, जगन्नाथ जी, बलदेव और सुभद्रा, तीनों सुभद्रा देवी बीच में होती है। तो ऐसे तीन रथ जब आगे चलते हैं तो कभी कभी भगवान जगन्नाथ की इच्छा से रथ वहीं रुक जाता है। ये तो सर्वविदित बात है भक्तों में कि वो रथ चलता है भक्तों को खींचने से नहीं, जगन्नाथ की इच्छा से। कभी कभी रथ रुक जाता है और भक्त बहुत खींचते हैं लेकिन रथ हिलता ही नहीं है। राजा प्रताप रुद्र के समय ऐसे हुआ कि एक बार रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान का रथ रुक गया और आगे ही नहीं बढ़ा, और राजा प्रताप रुद्र ने पहलवानों को बुलाया, पहलवानों ने भी खींचा, कुछ हुआ नहीं। घोड़ों को बुलाया, घोड़ों से खींचने से भी रथ हिला नहीं। हाथियों को बुलाया, हाथी ने भी बहुत खींचा, फिर भी रथ हिला नहीं। तो राजा प्रताप रुद्र बड़े चिंतित हो गए कि क्या करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे गए और रथ के पीछे जाके उन्होंने अपना कपाल रथ से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श हुआ वैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा। तो जगन्नाथ भगवान अपनी इच्छा से कभी रुक जाना चाहते हैं, और कभी कभी एक दिन, दो दिन, तीन दिन भी रुकते हैं। आप तो जानते हैं कि प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, उनका नाम क्या था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके गुरु कौन थे, गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके गुरु, उनके शिक्षा गुरु कौन थे, भक्ति विनोद ठाकुर। ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता थे। तो उनका जन्म जगन्नाथ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म जगन्नाथपुरी में हुआ। उस समय ये भक्ति विनोद ठाकुर जो है वो जिला अधिकारी थे पुरी में, तो बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति थे उस समय, और जगन्नाथ मंदिर का व्यवस्थापन भी वो संभालते थे। उन्होंने बहुत सारे सुधार कर दिए मंदिर के व्यवस्थापन में। तो उनका घर भी रथ यात्रा के पथ पे ही था। एक दिन जब रथ यात्रा हुआ एक साल, तो जगन्नाथ भगवान का रथ उनके घर के सामने रुक गया और तीन दिन वहीं पे रुका रथ, तीन दिन वहां से रथ आगे गया नहीं। कभी कभी ऐसे होता है। परंतु अधिकतर क्या होता है, एक बार शुरू होके अंत तक चले जाता है एक ही दिन में। परंतु कभी कभी ऐसे भी होता है, तो तीन दिन जब रथ वहां पे रुका हुआ होता है तो भक्त लोग आके खूब कीर्तन करते हैं, भोग चढ़ाते हैं, और उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर केवल थोड़े महीने के थे, छोटे से शिशु थे, तो उनकी माता भगवती देवी ने उनको रथ के ऊपर ले जाके जगन्नाथ के चरणों में रखा, और उस बच्चे ने सीधे जगन्नाथ भगवान के चरण कमलों को स्पर्श करके कृपा प्राप्त किया, और जगन्नाथ भगवान का एक हार, फूलों का हार उनके ऊपर गिर गया, जिससे ये साबित हुआ कि भगवान जगन्नाथ की कृपा उनके ऊपर थी। तो ऐसे होता है कभी कभी कि रथ बीच में रुक जाता है, कभी कभी रथ इसके लिए भी रुकता है कि बहुत सारे भक्त आते हैं, वो आरती करना चाहते हैं, जगन्नाथ भगवान को भोग देना चाहते हैं, इसलिए समय समय पर वो रथ वहां रुक जाता है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा प्रताप रुद्र से कहा कि एक जगह जहां पे बहुत सारा भोग चढ़ता है तो रथ बहुत समय तक रुक जाता है वहां पे, और चैतन्य महाप्रभु तब तक बहुत कीर्तन करके थक गए होंगे, तो वो वहां उद्यान में बगीचे में जाके थोड़ा विश्राम करेंगे, तो आप उस बगीचे के अंदर जाना जब वो विश्राम कर रहे हैं, और उस समय उनके चरण आप मालिश करना, और उनको आप कृष्ण के बारे में सुनाना कुछ, तभी आपको उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, राजा का वेश नहीं पहनना, एक साधारण व्यक्ति का वेश पहन के जाना। तो राजा प्रताप रुद्र ने रथ यात्रा की प्रतीक्षा की, रथ यात्रा का दिन आया, बड़े धूमधाम से रथ यात्रा शुरू हो गया, और बलगंडी नाम के स्थान में रथ रुक गया, और वहां पे चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर करके कई घंटों से कीर्तन किया था, तो थोड़े थक गए थे, तो वो पास वाले बगीचे में विश्राम करने के लिए गए। तो उधर प्रताप रुद्र राजा ने मौका देखा, और सार्वभौम भट्टाचार्य और अन्य भक्तों ने भी कहा कि जल्दी वहां जाओ। तो साधारण एक वैष्णव का पोशाक पहन के राजा प्रताप रुद्र वहां गए। श्री चैतन्य महाप्रभु एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, शयन कर रहे थे, और उनकी आंखें बंद थी। तो राजा प्रताप रुद्र ने जाके धीरे हल्के से महाप्रभु का चरण दबाना शुरू कर दिया, और उन्होंने श्रीमद् भागवत से और अन्य ग्रंथों से भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुंदर सुंदर श्लोक बताना शुरू कर दिया, एक के बाद एक उनका स्तोत्र पाठ कर किया, और फिर वो 31वें अध्याय में आए 10वें स्कंद के श्रीमद् भागवत में, जिसको गोपी गीत कहते हैं। जब श्री कृष्ण गोपियों से के बीच में से दूर चले गए थे तो गोपियां बहुत दुखी हो गई थी, और वो कृष्ण को ढूंढते हुए इधर उधर जा रही थी, और वृक्षों को पूछ रही थी, पक्षियों को पूछ रही थी कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। तो उस समय उन्होंने जो श्लोक कहे वो इस 31वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने बताया है, ये गोपी गीत नाम से प्रसिद्ध है। तो उसमें से एक वो अध्याय के श्लोक बोलना शुरू किया राजा प्रताप रुद्र ने। तो देखिए वहां के राजा भी कितने विद्वान हुआ करते थे, उनको भी ये सारे श्लोक आदि भगवान कृष्ण के गुणगान में मालूम होते थे। तो उन्होंने ये सारे श्लोक एक के बाद एक पाठ करना शुरू कर दिया, और फिर वो पहुंचे एक श्लोक में। कौन सा श्लोक है वो? तव कथामृतम तप्त जीवनम के कवि भी रीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ये भूरिदाजना। ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप में से कितने भक्तों ने ये श्लोक सुना है पहले, तव कथामृतम श्लोक? ये बहुत सुंदर और प्रसिद्ध श्लोक है। तो ये गोपियों का श्लोक है, वो आपस में कहते हैं और कृष्ण को कहते हैं, और इसका मतलब क्या है, गोपियां श्री कृष्ण से कहती है तव मतलब आपका, कथा आपके बारे में जो कथा है वो अमृत है। अमृत आप जानते हैं ना, अमृत का क्या लाभ होता है? स्वाद बहुत अच्छा होता है और दूसरा हमको अमर कर देता है। इसको अमृत, मृत मतलब जो मर जाता है, अमृत मतलब जो हमको मृत्यु से परे कर देता है। तो अमृत, तव कथामृतम, तो आपकी जो कथा है वो अमृत है। और ऐसा अमृत जो है तप्त जीवनम, ऐसे लोगों के लिए प्राण है, जीवन है, जो कि इस भौतिक जगत से संतृप्त हो गए, जो संतप्त हो गए हैं, जो बहुत बेचैन हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। कल हम देख रहे थे ड्रामा में ऑल इज वेल, वास्तव में कोई वेल नहीं है इस दुनिया में, नहीं, सभी लोग दुखी है, कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। केवल कृष्ण भक्ति करने से सच्चे सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं। तरह तरह की समस्याएं एक के बाद एक के बाद एक, कभी शांति नहीं मिल सकती इस दुनिया में हमको। तो ऐसे जितने भी लोग हैं दुनिया में जो कि पीड़ित है इन तीन प्रकार के तापों से, ताप, ताप मतलब कष्ट। कौन से तीन प्रकार के ताप हैं संसार में? ताप को क्लेश भी बोलते हैं, क्लेश आप समझते हैं ना, क्लेश मतलब कष्ट। तो तीन प्रकार के क्लेश कौन से हैं? आध्यात्मिक क्लेश, एक पहला क्लेश मतलब जो हमारे मन और शरीर से उत्पन्न होता है, जैसे हमको भूख लगता है, प्यास लगता है, नींद आती है, कोई अंदर से बीमारी होती है, पेट दर्द करता है, तनाव मन में हो जाता है, तो ये सब आध्यात्मिक क्लेश है। वो कष्ट जो हमारे मन और शरीर के द्वारा उत्पन्न होता है। दूसरा है अधिभौतिक क्लेश। इसका मतलब क्या है कि अन्य प्राणियों से या अन्य व्यक्तियों से जो हमें कष्ट मिलता है वो कष्ट, जैसे हमको मच्छर काटते हैं या हमारे कोई ग्राहक हमको कष्ट देते हैं, यह हमारे घर के अंदर ही कोई हमको परिवार का सदस्य कष्ट देता है, या हमारा पड़ोसी कष्ट देता है, या कोई चोर आके हमारे घर में चोरी करके हमको कष्ट देता है, तो ये सब अधिभौतिक क्लेश है। वो कष्ट जो अन्यों के द्वारा हमको मिल जाता है। और तीसरा है अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश, दैव से जो आता है या जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त होता है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंडी, बहुत ज्यादा बारिश या बिल्कुल बारिश ही नहीं, सूखा पड़ जाना, भूकंप होना, तूफान होना, इस तरह के जो प्राकृतिक नैसर्गिक जो उत्पात होते हैं इनको अधिदैविक क्लेश कहते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत जगह दुनिया में ऐसे सब चल रहे हैं, बड़े बड़े बाढ़ आए जिसमें हजारों लोग मर रहे हैं, ये अधिदैविक क्लेश होता है। तो ये तीन प्रकार के क्लेश, तीन प्रकार के ताप होते हैं, इसको त्रिविध ताप कहते हैं, तीन प्रकार के कष्ट। और इसके पीछे किसका हाथ है? दुर्गा, माँ दुर्गा। ये संसार जो है ये एक जेल के समान है और ये जेल का, जेल की जो अधिकारिणी है वो है दुर्गा देवी। तो अपने त्रिशूल से, त्रिशूल मतलब तीन त्रिशूल से, वो अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक क्लेश वो हमको दे रही है। तो लगातार एक के बाद एक हमको एक के बाद एक कष्ट मिलते जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने सही बुद्धि में हो और वो कहेगा कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, ऐसे तो कोई व्यक्ति नहीं कहेगा। बल्कि अधिकतर व्यक्ति क्या कहेंगे, इतनी समस्याएं हैं हमारे जीवन में कि बस हो गया, ऐसा बोलेंगे ना लोग ज्यादातर। तो ये त्रिविध ताप से ग्रस्त सभी जीव हैं, केवल मनुष्य नहीं, सारे प्राणी। हमको मच्छर से कष्ट होता है लेकिन मच्छर को उनका कष्ट है, उनको भी कितनी समस्याएं हैं। तो जो भी ऐसे त्रिविध ताप से ग्रस्त हैं, ये कृष्ण कथा का अमृत जो है ऐसे लोगों के लिए जीवन है, प्राण है, ऐसे कष्टों से उनको दूर कर सकते हैं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। जो बड़े बड़े कवि या दार्शनिक होते हैं उनके द्वारा ये वर्णित होता है। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे कृष्ण कथा का गान नहीं कर सकता है। इसमें इसका गान भगवान के का गुणगान करने के लिए योग्यता चाहिए। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, जो बड़े दार्शनिक होते हैं, वो सब भगवान के लीलाओं को, भगवान की कथाओं को, भगवान के उपदेशों को जानते हैं। और वो जब इन लीलाओं को बोलते हैं, उनको दोहराते हैं, तब ये असर सबके ऊपर पड़ जाता है। कल्मश अपहम, कल्मश अपहम, कल्मश मतलब हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इत्यादि, ये छह दुश्मन हमारे हृदय में है, इनको षड रिपु कहते हैं। रिपु मतलब शत्रु। तो षड रिपु, ये छह प्रकार के शत्रु हमारे हृदय में बैठे हैं। और जब तक ये हमारे हृदय में बैठे हैं और वो बाहर नहीं जाते तो हमको बहुत कष्ट होता है। तो जैसे ही हम भगवान की कथा सुनने में रुचि लेते हैं भक्तों के मुख से, तो फिर क्या होता है कि ये जो भी कल्मश है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब दूर भाग जाते हैं, हृदय को छोड़ के दूसरे स्थान में चले जाते हैं और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और पवित्र हृदय में सुख और शांति हो सकती है। जिस हृदय में ये षड रिपु बैठे हैं, उस हृदय में शांति कैसे हो सकती है? संभव नहीं है। और साथ साथ श्रवण मंगलम, जिसका श्रवण करने से मंगल का उदय होता है। अक्सर लोगों के घर में यह कहा जाता है शुभ लाभ। लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा नौकरी मिले, कोई अच्छा व्यवसाय मिले, या कोई अधिक धन मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले, तो ये शुभ है, मंगल है। परंतु ऐसा नहीं है। सच्चा मंगल है कि हमें भगवान की भक्ति मिले। मांगल्य का उदय वास्तव में भगवान की भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। ये सच्चा मांगल्य है। इसलिए भक्ति का एक गुण है शुभदा। शुभ या मंगल प्रदान करने वाली है भक्ति, सबसे ऊंचा श्रीमदाततम। और इसलिए सब जगह ये प्रचार प्रसार इसका होता है। और जो भी व्यक्ति इस कृष्ण कथा के को विस्तार में वर्णित या वितरित करता है, वो बहुत ही विशेष उदार हृदय वाला व्यक्ति है, ऐसे गोपियां कहती है। भूवि गृणंती, ये भूवि मतलब इस भूतल के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर, गृणंती ये, तो ऐसे जो लोग कृष्ण कथा को स्वीकार करते हैं और जो वितरण करते हैं, भूरिदा जना, ऐसे जन भूरिदा होते हैं, बहुत उदार हृदय के होते हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा होता है। और ऐसे लोगों को हमें श्रेष्ठ मानना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये श्लोक सुना, भूवि गृणंती ये भूरिदा जना। तो जब उन्होंने भूरिदा जना, अब तक तो वो केवल इन सारे श्लोकों का आनंद लेते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही ये भूरिदा श्लोक, तव कथामृतम श्लोक सुना, तो श्लोक के अंत में अचानक वो जोर से उठे और भूरिदा भूरिदा करके राजा प्रताप रुद्र को आलिंगन कर लिया। और अपने भाव में विभोर थे, इसलिए उनको पता नहीं चला, कम से कम उन्होंने ऐसे दिखलाया कि उनको पता नहीं चला कि ये कौन है, राजा है कि कौन है। फिर उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, तुमने ऐसा अमृत का पान हमको कराया है जिसकी कोई तुलना नहीं है, मैं बहुत ऋणी हूँ तुम्हारा, क्योंकि तुमने कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा हमको सुनाई है। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना असली स्वरूप राजा प्रताप रुद्र को दिखाया। राजा प्रताप रुद्र को विशेष कृपा हो गई और राजा प्रताप रुद्र ने कहा कि किसी से बताना नहीं। तो जो व्यक्ति हृदय से भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान बाह्य रूप से कोई अड़चन डाले भी, परंतु कोई न कोई व्यवस्था वो अवश्य करते ही है। तो राजा प्रताप रुद्र का इस प्रकार से उद्धार हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा के ऊपर ऐसी कृपा कर दी। तो जो भी भगवान के वाणी को स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, और स्वीकार करते करते वो अन्यों तक भी इस वाणी को पहुंचाते हैं, वो भी भूरिदा जना है, और उनसे भी उनके द्वारा भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए आपने इतना सेवा किया है इस रथ यात्रा के लिए आप सब ने, तो अवश्य भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण आप सबके ऊपर बहुत प्रसन्न है। उनकी कृपा अवश्य आप सबको है, पर इतना ही है कि अभी हमको और कृपा पानी है, हमको कृपा के पात्र बनना है। तो हमें अच्छी तरह से हमारा जप करना है। आप में से कितने भक्त रोज 16 माला हरे कृष्ण का जप करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। बहुत अच्छा। और आप में से कितने भक्त 16 से कम करते हैं लेकिन 8 या 8 से ऊपर। बहुत अच्छा। और 8 से कम। अच्छा। और बिल्कुल नहीं। 2। ठीक है। तो जो बिल्कुल नहीं करते हैं, आज से आपको शुरू करना है। ठीक है, ठीक है। आज से कम आपको 4 माला करना है। जो 4 करते हैं आपको 8 करना है, जो 8 करते हैं आपको 16 करना है, और जो 16 करते हैं आपको कम से कम 16 करते रहना है। आपको डर लगा होगा ये क्या बोलेंगे अभी आगे, कि जो 16 करते हैं वो 32 करेंगे कि ऐसा कुछ। जो 16 करते हैं वो भले 16 ही करें, लेकिन अच्छी तरह से करें, बड़े हृदय से करें, और श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को आपको पढ़ना चाहिए। रोज पढ़िए। आपके कितने भक्तों के घर में प्रभुपाद जी के ग्रंथ है? तो जिनके घर में नहीं है वो अवश्य ग्रंथ लाने चाहिए। कब कब लाएंगे? आज, शुभस्य शीघ्रम। आज के आज ही इन ग्रंथों को लाना है। और जिनके घर में ये ग्रंथ है, जैसे है वैसे है रखा है कि पढ़ते भी है? आप में से कितने भक्त रोज पढ़ते हैं प्रभुपाद की किताब? बहुत अच्छा। तो आप में से जो नहीं पढ़ते हैं, अभी पढ़ना भी शुरू कीजिए। ये अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये मंदिर जो है केवल मंदिर नहीं है। प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जो सच्चे मंदिर होते हैं वो विद्यालय होते हैं, जिसमें भगवान के बारे में विद्या हम प्राप्त करते हैं। तो जैसे एक विद्यालय में छात्र या विद्यार्थी रोज अपने पुस्तकों को पढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और अन्य अनेक ग्रंथ है, इन सब को नित्य नियम से हमें पढ़ना चाहिए, इनका अध्ययन करना चाहिए, इनके बारे में चर्चा करनी चाहिए। हम इनके बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो फिर संसार के कोई विषय के बारे में चर्चा करेंगे। तो संसार का विषय छोड़ के अधिक से अधिक भगवान की कथाओं की चर्चा हमें करने का प्रयास करना चाहिए। और यहाँ जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें आप अधिक से अधिक संख्या में आए, ताकि यहाँ भक्तों की संख्या भी अच्छी तरह से बढ़े और जो भक्त हैं वो भी भक्ति में सुदृढ़ हो जाए। ठीक है। तो आप कल रात सबको विश्राम अच्छा मिला? बहुत थके हुए होंगे आप कल रात। इतना सेवा आप सबने किया, तो आज भी बहुत सेवा है पंडाल में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कौन ले प्रश्न सत्व है, किसी के कोई प्रश्न है? प्रश्न ये है कि दुर्गा देवी के बारे में ये प्रश्न है कि दुर्गा देवी त्रिविध ताप देती है कि हर लेती है। जैसे एक जेल के अंदर सुपरिंटेंडेंट होता है, जेल का एसपी होता है, उसका काम क्या होता है, उसका कर्तव्य क्या है, अब बताएंगे? कैदी को सुधारना, किस प्रकार से दंड दे के, दंड देना किस प्रकार से, जैसे अदालत के से कहा है उस प्रकार से, किसी को एक तरह के कमरे में रखना है, किसी तरह से उस तरह के कमरे में रखना है, और जेल का एक शिस्त रहता है, उसके अनुसार उसको परिश्रम करना पड़ता है, और उसका कर्तव्य ये होता है कि कहीं ये कैदी जेल से भाग नहीं जाए, उनको बंद रखना पड़ता है। तो उस व्यक्ति को कष्ट देना मतलब उसको बंद रखना, ये जेल सुपरिंटेंडेंट का कर्तव्य होता है। तो क्या इसका मतलब है कि सुपर एसपी जेल का बहुत बुरा आदमी है, कि वो इतना क्रूर आदमी है कि सबको अंदर बंद करके रखता है? नहीं, वो तो बेचारा अपना ड्यूटी कर रहा है, अपना कर्तव्य करता है, क्योंकि सारे समाज के सुधार के लिए जितने भी गुनहगार हैं, जिन्होंने गलत गलत काम किए हैं, चोरी किया है, खून किया है, उन सबको अलग जेल में रखना आवश्यक है, नहीं तो सारे समाज में वो जो अच्छे लोग हैं उनको कष्ट देंगे। और इतना ही नहीं, जब ये कैदी जेल के अंदर बंद होते हैं तो उनको सुधारने का भी प्रयास एसपी जेल का करेगा। तो उसी तरह से दुर्गा देवी का कार्य ऐसे है, दुर्गा देवी का कार्य है कि त्रिविध तापों से देकर सबको यहीं पे बंद रखना, कोई यहां से छूट के नहीं जाए, क्योंकि वो भी भगवान कृष्ण की सेवा करती है, जेल सुपरिंटेंडेंट के समान है। दुर्गा नाम आया कैसे? दुर्ग से, दुर्ग मतलब एक किला, जेल भी एक किला होता है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार होते हैं ताकि कैदी उसको पार करके नहीं जाए, तो ऐसे किले को दुर्ग भी कहते हैं। और जो दुर्ग की रखवाली है वो है दुर्गा। तो ये भौतिक सृष्टि भी एक दुर्ग के समान है, जिसमें कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर में बांध के रखता है। तो ये दुर्गा देवी का काम है, वो आसानी से किसी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उनका कर्तव्य है। वो कब छोड़ेंगे? जब उनको आदेश ऊपर से आएगा। जेल सुपरिंटेंडेंट कब कैदी को छोड़ेगा? जब ऊपर से अदालत से चिट्ठी आएगा इनको छोड़ दीजिए, तब वो उनको छोड़ देंगे, अपने अधिकार पे वो नहीं छोड़ सकते। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कृष्ण भक्त बन जाता है, फिर भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार दुर्गा देवी को उस भक्त को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करना चाहिए, फिर वो व्यक्ति भगवान के धाम में चले जाएगा। तो ये दुर्गा देवी का काम होता है। वो भी भगवान के भक्त है, बहुत श्रेष्ठ भक्त है। जिस प्रकार से जेल का एसपी वो भी सरकार का एक अच्छा दास है, अच्छा सेवक है। सरकार ये नहीं चाहता है कि बिना वजह लोगों को कष्ट हो, प्रजा को, लेकिन जो लोग दूसरों को कष्ट देते हैं उनको बंद रखना आवश्यक पड़ता है, इसलिए सरकार ने जेल बनाया। ठीक उसी प्रकार से हम से भगवान के धाम में जाएंगे तो कष्ट करेंगे सबके लिए, क्योंकि हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हमारे हृदय में है, इसलिए हमारे लिए भगवान के धाम में स्थान नहीं है जब तक कि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं होंगे। तो कृष्ण भक्ति करके हमारा हृदय धीरे 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 शुद्ध हो जाएगा, ये षड रिपु हृदय से निकल जाएंगे, और फिर वैसे वैसे कृष्ण भक्ति बढ़ेगी, और जब शत प्रतिशत कृष्ण भक्त बन जाएंगे शुद्ध, फिर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने के लिए योग्य बन जाएंगे, फिर माया देवी हमको खुशी से छोड़ देंगे, लेकिन तब तक वो बनाए रखेंगे, हमको कैदी बना के रखेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न?
हाँ, इधर आए कैसे?
हम इधर आए कैसे? क्योंकि हमने हमारे स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है। छोटी सी स्वतंत्रता हमारे अंदर भी है, जैसे एक पानी के बूंद के अंदर समुद्र का बूंद, यहाँ समुद्र से आप इतना सा पानी लेंगे और उसको रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि समुद्र के ही गुण उस बूंद में भी है ना? क्यों है? क्योंकि वो समुद्र से ही आया है वो पानी। परंतु इतने पानी में आप जहाज को तैर सकते हैं? समुद्र में तैर सकते हैं। तो समुद्र के पानी का बूंद और समुद्र के जल में गुण धर्म में एकता है, परंतु मात्रा में भिन्नता है। उसी प्रकार से आत्मा और भगवान कृष्ण में गुण धर्म में एकता है, परंतु हम अणु हैं, बहुत छोटे हैं, और भगवान विभू है, अनंत है। तो भगवान के अंदर जो गुण है हमारे अंदर भी बहुत ही लेश मात्र रूप में है। तो भगवान पूर्ण स्वतंत्र है, तो हमारे हृदय में भी हमारे अंदर भी वो स्वतंत्रता का गुण है। तो हम स्वतंत्रता का मतलब है कि इसका सही उपयोग किया जा सकता है या दुरुपयोग भी किया जा सकता है, वो हमारे हाथ में है। भगवद गीता का उपदेश देने के बाद भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यथेच्छसि तथा कुरु। हे अर्जुन, मैंने भगवद गीता का उपदेश तुमको दे दिया, अब तुमको जैसे ठीक लगता है तुम करो, मेरा काम मैंने कर दिया, अभी तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी बात को स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। तो जीव के अंदर ये थोड़ी बहुत स्वतंत्रता रहती है, और जो भी हम यहाँ हैं इस भौतिक सृष्टि में, हम इसलिए आए हैं कि हम सब ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, तो अभी पुनः इसका सही उपयोग करना है। दुरुपयोग क्या किया हमने? भगवान से स्वतंत्र होकर हम भोग करना चाहते थे, जो कि संभव नहीं है। और स्वतंत्रता का सही उपयोग क्या है कि हमारे जीवन के केंद्र बिंदु को हम कृष्ण बनाएं और कृष्ण के लिए ही सब कुछ करें, कृष्ण के संतुष्टि के लिए कार्य करें, ये हमारे स्वतंत्रता की सही उपयोग है। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, यहाँ पे हम बार बार क्यों भगवान को भूल जाते हैं? क्योंकि इतना अभ्यास हमारा परिपक्व नहीं हुआ है। जब अभ्यास परिपक्व होगा तब हम भूलेंगे नहीं। जैसे एक किराने की दुकान में दुकानदार बैठा है, उसको पक्का सब याद होता है ना, हर चीज का कीमत कितना है, कितने 100-200 चीजें होंगे, लेकिन उसको बराबर पता होता है इसका ये उसका ये। क्यों? रोज देखता है, रोज इसका यही काम है ना उसका, सुबह से लेकर रात तक उसको यही करना है, तो दिन भर उसका चिंतन उसी में जाता है, तो उसको याद रह जाता है। लेकिन एक नया आदमी आएगा अंदर, उसको नौकरी में बिठाएगा, उसको कितना समय लगेगा जानने के लिए इसका कीमत कितना है? वो पूछता रहेगा इसका कितना उसका कितना, वो बताएगा लेकिन फिर दो दिन में भूल जाएगा इसका कितना। तो बार बार करते रहने से और दिन भर चिंतन मनन करने से फिर याद रह जाता है। तो हम भगवान को क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम अभी तक परिपक्व नहीं है। तो अभ्यास करने से, हमारी साधन भक्ति करने से धीरे 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 से वो स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी। जब परिपूर्णता को प्राप्त करेंगे भक्ति में, तभी हम भगवान को नहीं भूलेंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न? तो थोड़ा कीर्तन करेंगे 5 मिनट।